नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम अपनी नई कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह ये कहानी भी सत्य घटना पर आधारित है। मुझे ये कहानी नेहा ने भेजी है, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। दोस्तों मेरा नाम नेहा है, 22 साल की हूँ, फिगर 34-36, बदन गोरा, वजन 47 किलो। मैं आपको नई कहानी बताने जा रही हूँ जो जनवरी 2022 की है। एक साल पहले कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई थी, मैं फ़िलहाल घर पर ही रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी की पहली चुदाई कॉलेज के दूसरे साल में ही हो गई थी। बॉयफ्रेंड था मेरा, उसने मेरी गांड भी मार ली थी। आज की यह चुदाई की कहानी इसलिए खास है क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि असली चुदाई क्या होती है। मेरे बॉयफ्रेंड ने भले ही मुझे कई बार चूदा, लेकिन वो मुझसे 2 साल छोटा था। उसे चुदाई का अनुभव ना होने के कारण उसके लोड़े का साइज़ भी छोटा था। दोस्तों मेरे घर में मम्मी पापा, 2 भाई, 1 भाभी और मैं खुद हूँ। पापा बेंगलोर में जॉब करते हैं और 3-4 महीने में एक ही बार घर आते हैं। बड़े भाई की शादी हो गई है, भाभी के साथ दूसरे शहर में रहता है। बीच वाले भाई के बाद मैं घर में सबसे छोटी हूँ। जनवरी 2022 में मेरे दूसरे भाई की भी शादी हो गई। भाई की शादी को 1 हफ्ते बचे थे और घर में तैयारियां चल रही थी। ये कहानी उसी दौरान की है। मेहमानों का आना शुरू हो गया, शादी के 3 दिन बचे थे तो हम लोग पहले से बुक किए होटल में चले गए। पापा ने 4 कमरे हमारे लिए अलग रिजर्व रखे थे क्योंकि उनके ऑफिस के वो दोस्त आने वाले थे। होटल में पहला दिन सामान्य गुजरा। सभी लोगों ने उत्साह के साथ शादी की रस्मों को एंजॉय किया। हम लोगों को होटल में एक ही दिन हुआ था। रात में देर से सोने के कारण सुबह मेरी आंख जल्दी नहीं खुली। 8 बजे समय हो रहा था। पापा जल्दी जल्दी कमरे में आए, मुझे उठाया और फ्रेश होने को कहा। मैंने उन्हें बताया कि मेरे ऑफिस के गेस्ट आ रहे हैं तो मैं उनके रहने खाने का प्रबंध करना है। मैं जल्दी तैयार हो गई। पापा ने मुझे कार लेकर रेलवे स्टेशन जाने को कह दिया, किसी अंकल का नंबर दे दिया। सुबह 10 बजे ट्रेन में आ गई और सभी यात्री स्टेशन से बाहर निकले। मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया और अंकल लोगों को अपनी कार का लोकेशन बताई। हम पहुँचे होटल। कार के पीछे की तरफ 3 अंकल और सामने 1 अंकल बैठे हुए थे। मेरे बगल वाले अंकल मुझसे बातें करने लगे, मेरे बारे में, कॉलेज के बारे में सब जानकारी लेने लगे। पीछे बैठे हुए सभी अंकल शांत थे और पापा के बॉस लगातार मुझसे बात कर रहे थे जो आगे थे। बेंगलोर में होने के कारण उनकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर थी, मुझे कम समझ में आ रही थी। उनका नाम माधव रेड्डी था। ऐसे ही बात करते हुए होटल पहुँचे। इसके बाद मैंने रेड्डी अंकल से कहा, आप लोग फ्रेश हो जाइए और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिए। उसे शाम को संगीत था। कुछ देर बाद रेड्डी अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने नाश्ते के लिए कहा। होटल में सभी व्यस्त थे तो मैं ही उन सबके लिए नाश्ता लेकर चली गई। कमरे में पहुंची, दरवाज़ा खुलते ही मेरी नज़र रेड्डी अंकल पर पड़ी जो कल हाफ लोअर पहने हुए बिस्तर पर बैठे थे, शायद नहा कर आए थे। मैंने नाश्ता दिया। इसके बाद मैं शादी के काम में बिजी हो गई, लेकिन उस दिन शाम तक उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन किया और कुछ ना कुछ करने का बहाना बनाकर अपने कमरे में बुलाते रहे। दोपहर में जब मैं उन्हें खाने के लिए बोलने गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम यही खाना भिजवा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस वक्त उनके कमरे में शराब की महक से पता चल गया कि उन्होंने ड्रिंक की हुई है। खाना भिजवा दिया गया। शाम को मेहंदी और संगीत था। उस दिन मैंने लहंगा चोली पहनी हुई थी, नाच गाना चल रहा था। उसी वक्त पापा के 4 दोस्त भी पहुँच गए और सामने की तरफ बैठ गए। पापा के बॉस की नज़र मेरे ही ऊपर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद मैंने गौर किया कि उनकी नज़र मेरी नाभि पर थी क्योंकि लहंगा चोली के बीच में पेट खुला हुआ था। ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था और मैं सब समझ रही थी, लेकिन फिर भी मैं उनके मज़े ले रही थी। जब तक संगीत का कार्यक्रम चला, पापा के बॉस बस मुझे ही देखते रहे। उसके बाद सभी खाना खाने चले गए। सभी मेहमान खा रहे थे, लेकिन मैं और मेरा भाई उनकी सेवा में लगे रहे थे। इतने में पापा आए और बोले, बेटा ज़रा देखना रेड्डी साहब कहाँ गए। पहले तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा तो कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, अंकल खाना शुरू हो गया, पापा आपको बुला रहे हैं। मुस्कुराते हुए बोले, अरे बस 2 मिनट रुको, साथ ही चलता हूँ। मैं उनके कमरे के अंदर चली गई, देखा कि वो ड्रिंक कर रहे थे। बोले, अरे नेहा बुरा मत माना, लेकिन मुझे खाने से पहले पीने की आदत है, प्लीज़ ये सब किसी को बताना मत। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैं वहाँ पर खड़ी थी। अंकल ने जल्दी जल्दी 2 पैग लिए, बोले चलो अब चलते हैं खाना खाने। नेहा तुमने खाना खा लिया क्या? मैंने कहा, नहीं अंकल। तो फिर आज आपके साथ ही मैं खाना खाऊंगा। मैंने कहा, ज़रूर अंकल। हम बातें करते हुए चले गए, अलग अलग कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगे। ज़्यादातर लोगों ने खाना खा लिया था और ज़्यादा लोग नहीं बचे थे। रेड्डी अंकल लगातार मुझसे बात कर रहे थे और बीच बीच में मेरी सुंदरता की तारीफ भी किए जा रहे थे। खाना खाते हुए उनकी निगाहें बार बार मेरे सीने पर जा रही थी। मैं समझ रही थी कि रेड्डी अंकल की नज़र कहाँ जा रही है। उनकी जगह हर कोई उम्र का लड़का होता मेरी उम्र का, तो बस वो रुक नहीं पाता। खाना खाने के बाद हम लोग अपने कमरे में चले गए। रात को मैं अपनी मौसी की बेटी के साथ सो रही थी। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई और रेड्डी अंकल का ख्याल मुझे बार बार आने लगा। अगले दिन शादी थी, मैं किसी तरह सो गई। अगले सुबह जल्दी उठने के बाद मैं शादी के काम में लग गई। मम्मी मेरे पास आई और मुझसे बोली, जल्दी से नहाकर तैयार हो जा, कुछ सामान लेने बाहर जाना है। अगल बगल के सारे रूम के बाथरूम देखे, लेकिन कोई बाथरूम खाली नहीं था। रेड्डी अंकल पर पड़ी जो अपने रूम के बाहर टहल रहे थे। मैंने कहा, अंकल आपके रूम का बाथरूम खाली है क्या, मुझे नहाना है, जल्दबाजी है। उन्होंने कहा, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। नहाने के बाद मैंने ब्रा पैंटी वहीं छोड़ दी और सोचा कि बाद में ले जाऊंगी और बाज़ार चली गई। दोपहर में बाज़ार से आने के बाद ब्रा पैंटी लेने उनके बाथरूम में गई। वहां देखा तो यूनिची फर्श पर पड़ी हुई थी। ब्रा पैंटी उठाई तो देखा कि मेरी पैंटी पर कुछ चिपचिपा सा लगा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि रेड्डी अंकल ने मेरी पैंटी पर मुठ मारी है और अपना वीर्य वहीं पर निकाल दिया है। मैं जान गई ये सब, लेकिन मैं तो उनकी बेटी जैसी हूँ, फिर भी वो मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। मैं अपने काम में व्यस्त हो गई, ब्रा पैंटी को डस्टबिन में डाल दिया। शाम को शादी के दौरान भी रेड्डी अंकल की निगाहें मुझी पर थी। साड़ी में से कभी मेरे कमर, कभी मेरे पेट को देखते। किसी तरह शादी और अगली सुबह वो लोग बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। हमारी लाइफ सामान्य चलने लगी। कुछ ही दिनों में भैया भाभी हनीमून पर चले गए और पापा भी अपने काम पर वापस लौट गए। मैं और मम्मी घर पर थे। एक सुबह मेरे फ़ोन पर मैसेज आता है, रेड्डी अंकल का गुड मॉर्निंग। मैंने नंबर सेव किया था। मैंने मैसेज का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मुझे रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेजने लगे। करीब एक महीने तक ऐसे ही चला। एक दिन मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी, रोमांटिक वीडियोस फ़ोन में देख रही थी। पता ही नहीं चला कि कब मैं ब्लू फिल्म देखने लगी। एक हाथ से मोबाइल पकड़ी और दूसरा सलवार के अंडर डालकर चूत को सहलाने लगी। मेरे अंदर की जवानी की गर्मी भरी हुई थी। रात के 11 बजे थे, तभी रेड्डी अंकल का गुड नाइट का मैसेज आया। मैं सोच रही थी कि जवाब दूँ या ना दूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे मोबाइल पर ही टाइम पास कर लिया जाए, बॉयफ्रेंड तो कोई है नहीं। तो दोस्तों, पापा के दोस्त रेड्डी अंकल ने किस तरीके से मुझे सेट किया और मेरी जवानी का रस दबाकर चूसा, ये सब आपको आगे ही मालूम पड़ेगा। बस सुनते रहिए आप।